Today, while reading the translation of Guru Bandana, I got stuck, so I thought we'll just do it again. Because whenever there is a mistake, we must try to rectify it immediately. That's the best way to rectify. So, you all have the copies? Okay. Let's read it again. The lotus feet of our spiritual master are the only way by which you can obtain pure devotional service. I bow down to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates. By him ignorance is destroyed. Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor and Lord and Master of the devotees. O Master, be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. Your fame will spread all over three worlds. We take shelter of your lotus feet. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Gaur. So today we'll have the class translated in Hindi. Raghav Pandit. Srimad Bhagavatam 2.2.1. Is it 2.2.1? Oh yeah, right. Today is the first verse of the second chapter. This chapter is entitled as The Lord in the Heart. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naranchaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jaya Mudirae. Nashta prayeshu abhadreshu nittam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 2, text 1, The Lord in the Heart.
Srimad Bhagavat, Skand 2, Adhyay 2,
Aur Shlok,
Radhay mein Bhagwan.
Aur Shlok ka number kitna hai?
Shlok 1.
Shri Shuka Uvacha. Evam
pura
dharanayatma yonir. Actually, it should be dharanaya atma yonir. So let's read it that way. Dharanaya atma yonir nashtam. Smritim
Pratyavarudhya
Pratyavarudhya
Tushtat
Tatha
Sasarjedam
Amogha
Drishtir
Jathapayat यथाप्यात्
यथाप्यात्
प्राग्
प्राग्
व्यवसाय
व्यवसाय
बुद्धिः
बुद्धिः
श्रीशुक उवाच
श्रीशुक उवाच
एवं पुरा धारणयात्मयोनिर् नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्ध तुष्टा
नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्ध तुष्टा
तथा ससर्जेदम् अमोघ दृष्टिर्
तथा ससर्जेदम् अमोघ दृष्टि
यथा पयात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि
यथा पयात् प्राग् बुद्धि
एवं पुरा धारणयात्मयोनि
एवं पुरा धारणयात्मयोनि
नष्टां स्मृतिर्प्रत्यवरुद्ध तुष्टा
नष्टां स्मृतिर्प्रत्यवरुद्ध तुष्टा
तथा ससर्जेदम् अमोघ दृष्टिर्
तथा ससर्जेदमोघ दृष्टि
यथा पयात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि
यथा पयात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि
एवं पुरा धारणायात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्ध तुष्टा
नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्ध तुष्टा
तथा ससर्जेदम् अमोघ दृष्टिर्
तथा ससर्जेदम् अमोघ दृष्टि
यथा पयात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि
यथा पयात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि
Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada.
Krishna Kripa Murti Shri Prabhupada Ji ke anusar.
Shri Sukadev Goswami said, formerly, prior to the manifestation of the cosmos, Lord Brahma, by meditating on the Virat Roop, regained his lost consciousness by appeasing the Lord. Thus, he was able to reveal the creation as it was before.
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपनी लुप्त चेतना प्राप्त की इस तरह वे पूर्ववत सृष्टि का पुनर्निर्माण कर सके
Purport by Srila Prabhupada The example cited herein of Shri Brahma ji is one of forgetfulness. Brahmaji is the incarnation of one of the mundane attributes of the Lord. Being the incarnation of the passion mode of material nature, he is empowered by the Lord to generate the beautiful material manifestation. Yet, due to his being one of the numerous living entities, he is apt to forget the art of his creative energy. This forgetfulness of the living being, beginning from Brahma down to the lowest insignificant ant, is a tendency which can be counteracted by meditation on the Virat Roop of the Lord. This chance is available in the human form of life, and if a human being follows the instructions of Srimad Bhagavatam and begins to meditate upon the Virat Roop, then revival of his pure consciousness and counteraction of the tendency to forget his eternal relationship with the Lord can follow simultaneously. As soon as this forgetfulness is removed, the Vavasaya Buddhi, as mentioned here and in the Bhagavad Gita 241, follows at once. This ascertained knowledge of the living being leads to loving service to the Lord, which the living being requires. The kingdom of God is unlimited. Therefore, the number of the assisting hands of the Lord is also unlimited. The Bhagavad Gita 13:14 asserts that the Lord has his hands, legs, eyes and mouths in every nook and corner of his creation. This means that the expansion of differentiated parts and parcels called jivas or living beings are assisting hands of the Lord, and of all of them, and all of them are meant for rendering a particular pattern of service to the Lord. The conditioned soul, even in the position of a Brahma, forgets this by influence of illusory material energy generated out of false egoism. One can counteract such false egoism by invoking God consciousness. Liberation means getting out of the slumber of forgetfulness and becoming situated in the real loving service of the Lord, as exemplified in the case of Brahma. The service of Brahma is the sample of service in liberation distinguished from the so-called altruistic services full of mistakes and forgetfulness. Liberation is never inaction, but service without human mistakes.
Śrīla Prabhupāda ji ke anusār तात्पर्य, यहां पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। वे प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के कारण वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। जीव यह विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना आरंभ कर देता है तो उसकी शुद्धि चेतना का उदय पुनः उदय हो सकता है, तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। जो ही यह विस्मृति दूर हो जाती है त्यों ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है, जिसका यहां पर और भगवद गीता में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतएव भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवद गीता बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुंह तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं, और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त हैं। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य ईश चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना। जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है, ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्त अवस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है, और यह तथाकथित परोपकार से भिन्न है जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से पूर्ण होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं है, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा है।
एवं पुरा धारणयात्मजोनिर् नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्ध तुष्टात् तथा ससर्जेदम् अमोघ दृष्टिर् यथा पयात प्राग व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी सेड, फॉर्मली prior to the manifestation of the cosmos, Lord Brahma, by meditating on the Virat Roop, regained his lost consciousness by appeasing the Lord. Thus, he was able to reveal the creation as it was before. So, in the purport of this verse, Srila Prabhupada is mentioning that although Lord Brahma is a very, very exalted personality, his ability is inconceivable. But still, he forgets.
Srila Prabhupada bata rahe hain ki Brahma ji, jo is srishti ke sabse bade devta hain, ve bhi apni smriti ko bhul jate hain.
Forgetfulness actually comes from forgetfulness of Krishna.
Vismati ye rajogun ke karan hoti hai.
Vismriti, Bhagavad Vismriti, Bhagavan ko bhul jane ke karan hi Vismriti ka uday hota hai.
Bhagavan ko bhul jane ke karan hi Vismriti hoti hai.
Actually, living entities, consciousness is very, very minute.
Vastav mein jivatmaon ki jo chetna hai wo ek maryadit hai.
Therefore, when he depends upon his own ability, he limits himself.
Isliye wo apni swayam ki shakti par nirbhar karta hai.
But when a living entity is linked to Krishna, then he functions through Krishna's consciousness, not through his own consciousness.
जब वह भगवान कृष्ण से संबंधित हो जाता है, तो भगवान की चेतना से नियंत्रित होता है, न कि स्वयं की चेतना से।
इसका मतलब ये था कि जीव जब भगवान के चेतना के साथ जुक्त रहता है, तो उसका कार्य भगवान के चेतना के द्वारा ही संपादित होता है, अपना चेतना के द्वारा नहीं, अपना सीमित चेतना के द्वारा नहीं। So, a living entity's limitation is caused by his forgetfulness of Krishna, by his separations from Krishna. Jivatma, jo apne aap ko jab apne par aastha sthapan karke kaam karta hai, khud kuch karta hai, तो आपने को वो बहुत सीमित बना लेते हैं. Maybe I'll just give the class in English. You can just translate to those who are. You are feeling shy, or let it be. Raghav Pandit, okay, do it. Don't feel embarrassed. Even if there is mistake, don't worry. Yeah. Even if there is mistake, just carry on. There is no need to feel. So let me get my thoughts together. हम छोटा-छोटा ये करेंगे तो करते रहो. So here Prabhupada is pointing out that Brahmaji is one of the incarnation of the Lord in relation to the material nature.
यहाँ में ब्रह्माजी जो हैं वो भगवान के अवतार हैं प्रकृति के.
In relation to material nature, there are three incarnations: Brahma, Vishnu, and Mahesh.
भौतिक प्रकृति में भगवान के तीन अवतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश.
तुम्हारे बांग्लाए अनुवाद कर दरकार नहीं. लेट देम लर्न हिंदी. Okay? So let them listen to the Hindi translation. There are three modes of material nature, mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance.
इनके तीन भिन्न गुण हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण.
And three different activities are performed through these three modes.
और तीन भिन्न प्रकार की गतिविधियां ये संचालित करते हैं.
In the mode of passion, creation takes place.
रजोगुण के प्रभाव से सृष्टि का उत्पत्ति होती है.
In the mode of goodness, the maintenance takes place.
सतगुण के प्रभाव से पालन होता है.
And in the mode of ignorance, destruction takes place.
और तमोगुण से विध्वंस होता है.
So these three modes are controlled by the Lord through three different incarnations.
ये तीन प्रकार के जो गुण हैं, इनको भगवान की तीन प्रकार की अवतारों से कंट्रोल होता है.
So the mode of passion, the incarnation in the mode of passion is Brahmaji.
तो ये जो रजगुण है, इसमें भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं.
इनकार्नेशन दैट कंट्रोल्स द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज लॉर्ड शिवा.
जो तमोगुण का अवतार है वो लॉर्ड शिव है.
एंड द इनकार्नेशन दैट टेक्स केयर ऑफ द मेंटेनेंस थ्रू द मोड ऑफ गुडनेस इज विष्णु.
जो सतोगुण के प्रभाव से पालन का कार्य होता है वो विष्णु जी द्वारा किया जाता है.
सो दैट्स व्हाई दीज थ्री इनकार्नेशंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज मंडेन एट्रीब्यूट्स ऑफ द लॉर्ड.
इस तरह से ये जो तीन अवतार हैं ये भगवान के मन द्वारा
भौतिक मंडेन का मतलब है भौतिक
अवतार हैं.
हाँ, भौतिक सृष्टि के साथ संयुक्त हैं.
ये जो तीनों अवतार हैं ये भौतिक सृष्टि से युक्त हैं, भौतिक सृष्टि के लिए है.
जय श्री श्री कृष्ण बलराम की
जय.
जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय. श्री श्री गौर निताय की. So the question may arise that how come Vishnu also has been considered to be a mundane attribute of the Lord's incarnation.
इस प्रकार प्रश्न उत्पन्न होता है कि विष्णु भी इस प्रकार भौतिक अवतारों में आते हैं.
Yes, the incarnation of the Lord as Vishnu is also related to the material creation.
हाँ, यह भौतिक अवतार विष्णु का भौतिक अवतार है.
बिकॉज विष्णुज और द लॉर्ड्स अपीयरेंस एज विष्णु इज ओनली फॉर द मंडेन क्रिएशन, मेटीरियल क्रिएशन.
क्योंकि यहां पर विष्णु जी का अवतार भौतिक संसार के लिए होता है.
वी कैन सी the first incarnation, Vishnu incarnation, is Mahavishnu.
हम देखते हैं कि पहला विष्णु जी का incarnation जो है वो महाविष्णु के रूप में है.
महाविष्णु lies in the causal ocean and from his breathing the universes are generated.
महाविष्णु कारण समुद्र में लेटे हुए हैं और उनके श्वासोश्वास से सृष्टि का सृजन होता है.
So, and then there is Garbhodakshay Vishnu and Kshirodakshay Vishnu. So, all three Vishnu incarnations are in relation to the material nature.
और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और चिरोदक्षाई विष्णु, इस तरह तीनों विष्णु भौतिक संसार के लिए ही होते हैं।
सो व्हेन द मटेरियल, इफ द मटेरियल नेचर वाज नॉट देयर देन देयर वाज नो नीड फॉर द लॉर्ड टू अपीयर एज विष्णु।
अगर भौतिक संसार नहीं होता तो भगवान को विष्णु के रूप में आने की आवश्यकता नहीं होती।
बट अनलाइक ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा, विष्णु इज कृष्ण हिमसेल्फ।
परंतु ब्रह्मा और विष्णु से भिन्न होते हुए, ब्रह्मा और शिव से भिन्न होते हुए विष्णु भगवान स्वयं हैं।
सो कृष्ण हिमसेल्फ इज विष्णु।
इस तरह कृष्ण स्वयं विष्णु है।
Whereas Lord Shiva and Lord Brahma are not Krishna himself, although they are incarnations.
यद्यपि Lord Brahma और शिव उनके अवतार होते हुए भी वे स्वयं भगवान नहीं है,
स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं। Now in this respect we can consider one example.
इस हिसाब से हम यह विचार कर सकते हैं,
एक दृष्टांत दे सकते
कि कृष्ण ही भगवान है।
दृष्टांत, या सो द एग्जाम्पल इज से व्हेन यू बिल्ड ए हाउस,
दृष्टांत है,
बिल्ड ए हाउस, डू यू बिल्ड इट योरसेल्फ?
जब हम मकान बनाते हैं तो क्या हम स्वयं मकान बनाते हैं?
If you are not a contractor, then you are. If you are a contractor, then yes, you will build the house. Yes.
हाँ, यह संभव हो सकता है। यदि हम contractor हों, तो हम मकान बना सकते हैं।
So when you build a house, what you do? You call a contractor.
तो जब आप मकान बनाते हैं, तो आप ठेकेदार contractor को बुलाते हैं।
हाँ. And then you tell the contractor, okay, you build the house.
और उसे ठेका देते हैं कि आप ये मकान को बनाइए।
कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड्स द हाउस बट यू सप्लाई द मनी, यू सप्लाई द इंग्रेडिएंट्स, यू सप्लाई द मटेरियल्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड्स इट।
कॉन्ट्रैक्टर मकान बनाता है परंतु सब कुछ सप्लाई आप ही करते हैं, जैसे जो भी उसमें सामान लगता है वो सारा सामान आप देते हैं, इंजीनियर आप लाते हैं,
और आपका रुपये से वो सामान खरीदा जाता है,
और आप ही की संपत्ति से, रुपये से वो सामान खरीदते हैं।
एंड देन व्हेन द हाउस बिकम्स ओल्ड, यू वांट टू डिमोलिश द हाउस टू बिल्ड अनदर न्यू हाउस।
और जब वह मकान जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब आप उसे डिमोलिश करके नया मकान बनाना चाहते हैं।
सो देन यू कॉल, डू यू डू इट योरसेल्फ? नो, यू कॉल समबडी, यू कॉल a demolition department and they come and break the house.
तो उसे नष्ट करने के लिए या उसे तोड़ने के लिए आप फिर किसी ठेकेदार को या और किसी को बुलाते हैं।
That also is done with your money.
वह भी आप ही के पैसे से बनता है, होता है।
But when the house is built, then who lives in the house?
परंतु जब मकान बन जाता है तो उसमें कौन रहता है?
यू लिव इन द हाउस,
उसमें आप ही निवास करते हैं।
हु मेंटेन्स द हाउस? यू मेंटेन द हाउस।
मकान को कौन चलाता है, कौन उसको देखता है? आप ही उसको देखते हैं।
सो सिमिलरली दिस मटीरियल नेचर, although it is created by Brahma, but it is created by the real owner of the universe. Who is the real owner?
Krishna. इसी तरह यह जो सृष्टि का निर्माण होता है, यह यद्यपि ब्रह्मा जी द्वारा होता है परंतु इसके वास्तविक सृष्टिकारक
And when there is a need to destroy the house, who does it? Lord Shiva does it.
जब हम मकान को गिराते हैं तो उसी प्रकार जब ये सृष्टि का नाश होता है तो शिव जी द्वारा होता है।
बट द मेंटेनेंस इज डन बाय विष्णु,
और इसका पालन पोषण भगवान विष्णु के द्वारा होता है।
सो वी कैन, फ्रॉम दिस वी कैन सी हु इज द रियल प्रोप्राइटर एंड हु इज द रियल मेंटेनर।
इस तरह हम देख सकते हैं कि इसका असली मालिक कौन है.
सो ऑल्दो लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा हैज देयर रेस्पेक्टिव रोल्स बट विष्णु इज द रियल प्रोप्राइटर.
यद्यपि इसमें ब्रह्मा जी और शिव जी का भिन्न रोल है परंतु असल भगवान स्वयं है.
एंड द बोथ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आर डन बाय द विल ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ.
दोनों ही सृष्टि का सृजन और संहार दोनों भगवान की इच्छा से होता है.
सो नाउ व्हाई डज कृष्णा क्रिएट दिस मटेरियल नेचर.
प्रश्न यह है कि भगवान क्यों सृष्टि उत्पन्न करते हैं,
इस भौतिक जगत को सृष्टि करते हैं. व्हाई डज लॉर्ड क्रिएट दिस मटेरियल नेचर.
भगवान क्यों इस भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हैं.
ही क्रिएट्स दिस मटेरियल नेचर इन ऑर्डर टू लेट द लिविंग एंटिटीज regain their lost relationship with him.
यह भौतिक सृष्टि भगवान इसीलिए करते हैं कि यह जो जीवात्मा है वो उनसे अपना संपर्क पुनः स्थापित कर सके.
Some living entities do not want to stay with Krishna.
कुछ जीवात्माएं भगवान से नहीं संपर्क करना चाहती.
They are known as nitya badhya. जीवात्मा
ऐसे जीवात्माओं को नित्यबद्ध जीवात्मा कहते हैं.
इटर्नली कंडीशन लिविंग एंटिटीज.
ये क्योंकि ये
ओके ये बताए नित्यबद्ध है
बद्ध है.
एंड नाउ या एंड जस्ट एज देर आर नित्यबद्ध देर आर नित्य मुक्त देर इटर्नली लिबरेटेड सोल्स.
और इसी प्रकार जो इनसे मुक्त है वो मुक्त जीव है.
सो मुक्त मीन्स टू बी कनेक्टेड टू द लॉर्ड एंड बी एंगेज्ड इन हिज डिवोशनल सर्विस.
मुक्त का अभिप्राय है कि वे भगवान से संपर्क में हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं.
सो व्हेन द लिविंग सम लिविंग एंटिटीज दोज हु आर सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड दे गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड what actually happens, what is the outcome of being separated from the Lord.
इस प्रकार जो उनसे पृथक हैं वो ये समझ सकते हैं कि उनसे पृथक होने का कारण क्या है.
नहीं, पृथक होने से क्या होता है.
पृथक होने से क्या होता है.
पृथक होने से क्या होता है. When one is separated from the Lord, then what happens? He suffers.
पृथक होने से
सफरिंग
कष्ट प्राप्त होता है.
सो दिस मटीरियल नेचर इज अ प्लेस वेयर अ लिविंग एंटिटी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड रियलाइज दैट द रिजल्ट ऑफ हिज इंडिपेंडेंट एक्शन इज सफरिंग.
इस तरह यह जो भौतिक संसार है इसमें यह ज्ञात होता है कि हमें पृथक होने से क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए.
सो लिविंग एंटिटी wants to enjoy and he makes all kinds of endeavor to enjoy, but when he makes that endeavor separated from Krishna, then the result is suffering.
जब जीवात्माएं आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करती हैं और वे भगवान से पृथक होती हैं तब उनकी और भी कष्ट बढ़ते जाते हैं.
So in this way the living entity begins to realize the result of his wanting to enjoy independent of Krishna.
इस प्रकार यहां पर उनको यह पता चलता है कि भगवान से पृथक होकर आनंद लेने का क्या परिणाम है.
So therefore a living entity eventually gets to realize that this is not to be done.
जीवात्माएं यहां यह महसूस करती हैं कि यह नहीं करना चाहिए.
So then the living entity, if he is fortunate,
इस तरह से अगर जीवात्मा भाग्यवान है तो
when he is fortunate, he comes across a devotee of the Lord and gets to know what is the cause of his suffering and how to become free from his suffering condition.
तो ऐसी भाग्यवान जीवात्मा हरि भक्तों का साथ लेती हैं या उनके साथ प्राप्त करती हैं और उनसे यह समझ सकती हैं कि इस दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है।
इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ब्रह्मांडो भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वाइल अ लिविंग एंटिटी इज ट्रैवलिंग इन दिस मटीरियल नेचर, अ फॉर्चुनेट लिविंग एंटिटी वाइल ट्रैवलिंग इन दिस यूनिवर्स By the mercy of Guru and Krishna, he receives the seed of devotional service.
इस प्रकार जो भाग्यवान जीवात्माएं हैं और विश्व में भ्रमण कर रही हैं, गुरु एवं भगवान कृष्ण की कृपा से भक्ति का यह बीज प्राप्त करती हैं।
And when he cultivates that seed of devotional service, then he achieves the perfection of his life.
जब वे इस प्रकार भक्तिमय सेवा में युक्त होती हैं, तो उनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है।
So that is what has been pointed out time and time again in Srimad Bhagavatam.
यही श्रीमद् भागवतम में बार-बार बताया जाता है।
We all are very fortunate while traveling in this universe. Somehow we came in contact with a bona fide spiritual master.
हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि इस प्रकार विश्व में भ्रमण करते हुए हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण में आए हैं।
And by his mercy and by Krishna's mercy, we receive the devotional seed, the seed of devotional service, the Hare Krishna Mahamantra.
और इस प्रकार हम भगवान कृष्ण एवं गुरुदेव के कृपा से ये भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करने का हृदय में उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति होती है।
एंड बाय कल्टीवेटिंग दिस सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस वी कैन अचीव परफेक्शन।
और इस प्रकार भक्तिमय सेवा करके हम हमारे
जन्म को सफल
प्राप्त करते हैं।
So this is a very very rare opportunity.
यह बहुत ही दुर्लभ अवसर है।
And must take advantage of this.
और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए।
How to take advantage of this? By becoming serious about spiritual life.
हम किस तरह से इसका फायदा ले सकते हैं? हम कृष्ण भावनामृत में गंभीरता पूर्वक इसे ग्रहण करके इसका फायदा ले सकते हैं।
निष्ठा प्राप्त, निष्ठा के साथ
भक्ति, निष्ठा के साथ
भक्ति को आचरण
अपनाएंगे तो हमें इसका पूर्ण फायदा प्राप्त होगा।
एंड व्हेन वी सिंसियरली प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस द रिजल्ट विल बी देयर ऑटोमेटिकली।
और जब हम निष्ठापूर्वक यह भगवान की भक्तिमय सेवा करेंगे तो इसका परिणाम स्वतः प्राप्त होगा।
And what is the result? The result of devotional service, we become free from our false ego.
और इसका सबसे सुखद परिणाम जो है वह यह है कि हम हमारे अहंकार से मुक्त हो जाते हैं।
Srila Prabhupada pointed out here in the purport that this all our material bondage, the root of our material bondage is our false ego.
Srila Prabhupada ji इस तात्पर्य में प्रमुखता से बता रहे हैं कि हमारी भौतिक संसार में बद्धता का जो मुख्य कारण है वह अहंकार ही है।
Prabhupada is, I'll just repeat this point. The conditioned soul, even in the position of a Brahma, forgets this by the influence of illusory material energy generated out of false egoism.
एक बद्ध जीव जो कि ब्रह्मा जी भी क्यों न हो, वे रजोगुण के प्रभाव में यह भूल जाते हैं, अपनी स्मृति को भूल जाते हैं।
नहीं, did you get that? अनुवाद? अच्छा, okay. ये परपोर्ट मिला है?
या
परपोर्ट का लास्ट ये में से थोड़ा सा ये towards the later part of the purport. It mentions the conditioned soul, even in the position of Lord Brahma.
Baddh jeev, chahe vah Brahma ke pad par hi kyun na ho,
forgets this by the influence of illusory material energy.
Mithya ahankar se utpann bahiranga shakti ke prabhav se ise bhul jata hai.
Generated out of false egoism. Generated out of illusory energy of the Lord is created by false ego.
यह जो माया है जिसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं भगवान के द्वारा ही रचित है.
हाँ नहीं ये किससे उसका उत्पत्ति होता है माया का अहंकार से होता है. अहंकार ही माया का कारण है.
यह जो अहंकार है वही माया का कारण है.
सो व्हाट इज अहंकार. अहंकार इज आवर मिस्टेक एन आइडेंटिटी.
अहंकार जो हमारी त्रुटिपूर्ण गतिविधियां हैं
या मिथ्या परिचय भ्रांत परिचय है भूल परिचय है
भूलवश हम जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं वह है
नहीं अपना परिचय
अपना स्वयं का जो परिचय है वह जो त्रुटिमय है वह अहंकार है.
हमारा असल परिचय क्या है.
हमारा असल परिचय आत्मा है. आत्मा है
हमारा. व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी. आवर रियल आइडेंटिटी इज दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा.
हमारा जो असल परिचय है वह है हम भगवान के नित्य सर्वेंट हैं.
सेवक. रियल आइडेंटिटी इज वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा. नाउ व्हेन वी डोंट एक्ट ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग दैट इज माया. दैट इज फॉल्स ईगो एंड दैट्स द रूट ऑफ माया.
जब हम इस बात को भूल जाते हैं और इस पर काम नहीं करते हैं तब हमारे को अहंकार की उत्पत्ति होती है.
सो द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज वेरी वेरी बिविल्डरिंग.
ये बहिरंगा शक्ति भगवान की बहुत ही शक्ति.
बिकॉज इट इज ड्यू टू द इल्यूजरी एनर्जी वी कंसिडर दिस मेटीरियल नेचर टू बी रियल.
ये माया के वश में हम संसार में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं.
बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजरी एनर्जी वी कंसिडर दिस मेटीरियल नेचर टू बी रियल. इसको वास्तव समझते हैं.
इस माया के प्रभाव से यह जगत वास्तविक लगता है.
बट एक्चुअली दिस मेटीरियल नेचर इज नॉट रियल.
परंतु वास्तव में यह भौतिक प्रकृति वास्तविक नहीं है.
इट्स लाइक ए ड्रीम.
यह एक स्वप्न की तरह है.
नाउ इन ए ड्रीम कैन यू गेट द रियल थिंग.
क्या हम स्वप्न में सब कुछ यथार्थ देखते हैं.
इफ आई ड्रीम दैट आई हैव बिकम अ किंग विल इट मेक एनी डिफरेंस.
यदि स्वप्न में मैं सोचूं कि मैं एक राजा हूं तो क्या इससे फर्क पड़ता है.
वाई नॉट. बिकॉज आई मे थिंक दैट आई एम अ किंग बट नोबडी एल्स विल एक्सेप्ट इट.
तो इसमें तो यही एक भ्रम होता है कि मैं राजा हूं अन्य तो नहीं समझते कि मैं राजा हूं.
सो दैट इज वॉट अहंकार और फॉल्स ईगो डज. मेक्स अस थिंक दैट वी आर समथिंग बट नोबडी एल्स एक्सेप्ट इट.
इस प्रकार यह जो अहंकार है इसकी वजह से हमें यह ज्ञान होता है कि मैं ही सब कुछ हूं और कुछ नहीं.
एंड दैट इज वॉट ए फॉल्स ईगो इज डूइंग टू एवरीबॉडी. एवरीबॉडी इज थिंकिंग आई एम द ग्रेटेस्ट.
प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित है
और सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं
और यह सोचने में लगे रहते हैं.
ओके इट्स ऑलराइट. और बिकॉज ऑफ अ फॉल्स ईगो डोंट यू थिंक दैट वी आर द ग्रेटेस्ट. सीताराम. आई एम द ग्रेटेस्ट. एक्चुअली एवरीबॉडी एज प्रभुपाद इज पॉइंटिंग आउट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू एन एंट. इवन एन एंट इज थिंकिंग आई एम द ग्रेटेस्ट.
सभी लोग ऐसा सोचते हैं माया के प्रभाव से और तो और ब्रह्मा जी भी स्वयं ऐसा सोचने लगते हैं.
एक चींटी तक सब सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं. So, but the result is, we become a laughing stock.
और उसका परिणाम जो है,
उसका परिणाम, हम परिणाम से हम हास्यास्पद हो जाते हैं.
हास्यास्पद हो जाते हैं.
Consider, you know, if an ant is thinking, I'm the greatest, how will you feel? Now, similarly, why are you laughing at an ant? We are also like ants, as insignificant as an ant, but we are thinking, I'm the greatest.
हम लोग चींटी की तरह क्षुद्र हैं, फिर भी हम कभी कभी बहुत उच्चता की बात करने लगते हैं, सोचते हैं हम बहुत महान हैं.
Like, we may laugh at an ant thinking, oh, look at that insignificant ant and he's thinking he's so great. Similarly, the demigods, when they look at us, they laugh. So look at this guy, Bill Gates, thinking that he's so big. This insignificant little ant. Samjhe? Achha. ओके आई विल इसका अनुवाद मैं ही कर रहा हूं. जैसे हम एक चींटी देख चींटी के ओर हंसते हैं कि देखो वो सोचते हैं कि ये कितना बड़ा कितना महान है, वैसे देवताओं भी हमारे ओर देखकर ऐसे सोचते हैं, देखो ये मनुष्य है, ये बिल गेट्स हैं. बिल गेट्स कौन है? जो बहुत बहुत बड़े आदमी हैं कंप्यूटर के वर्ल्ड में. वो दुनिया के सबसे मनुष्य में से वो सबसे अमीर हैं आज, पर देवताओं के दृष्टिकोण से एक चींटे जैसा है. तो ये जो है हमारी ये स्थिति का कारण क्या है? ऐसे क्यों हम सोच रहे हैं? हमारे अहंकार के कारण. जब हम भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? ये अहंकार मतलब हमारा जो भ्रांत परिचय वो दूर हो जाता है. When we take to devotional service, what happens? Our false identity, false ego disappears and we become humble.
इस प्रकार जब हम कृष्ण भावनामृत को या भक्तिमय सेवा में आते हैं तो हमारा जो यह अहंकार है यह लुप्त हो जाता है.
सो दैट इज द साइन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. द मोर यू मेक एडवांसमेंट द मोर हम्बल विल बिकम.
वह एक समय होता है जब हम भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं हम और विनम्र होते जाते हैं.
More tolerant we become.
और ज्यादा सहनशील भी.
Therefore, Chaitanya Mahaprabhu is pointing out in Shikshashtakam, Trinadopi Suni Chena Tarorapi Shahishnuna. A devotee is more humble than a blade of grass and as tolerant as a tree.
इसलिए शिक्षाष्टक में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें कितना नम्र और कितना सहनशील होना चाहिए.
हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. ऑल ग्लोरियस टू श्रील प्रभुपाद. डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? ओके कृष्णार्चन.
हरे कृष्ण गुरु महाराज. इन द मटीरियल वर्ल्ड लॉर्ड विष्णु कृष्ण टेक्स द फॉर्म ऑफ विष्णु इन ऑर्डर टू मेंटेन द मटीरियल वर्ल्ड. सो द क्वेश्चन इज इन द स्पिरिचुअल स्काई इज देयर नो फॉर्म ऑफ विष्णु वेयर ही परफॉर्म्स हिज पास्ट टाइम्स आल्सो?
या इन स्पिरिचुअल स्काई ही इज नारायण. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नारायण एंड विष्णु. ही इज नारायण, बट नारायण इन फॉर द सेक ऑफ मटीरियल क्रिएशन He assumes the role of Vishnu. But you see, as Vishnu, Narayan is not active. Look at Garbhadaksha, look at Mahavishnu. What's he doing? He's lying down. yoga nidra. Same it with Garbhodakshaya Vishnu and same is with Kshirodakshaya Vishnu. But Narayan in Vaikuntha, he is active. When it comes to material creation, he is inactive. He is simply glancing. He is simply lying down. And the material nature becomes manifest. Why? Because he has nothing to do with the material nature. Therefore he is inactive. Sitaram has the next question. He doesn't need a mic. Give it.
Swami, when you are very despondent, when coming into contact with the expressions of humility, the personality is such a bhakti nirupa, because you know, it seems almost impossible we can say that the honest one prevented that despondency is very hard, even though it is not so bhakti.
It's a good point. I was also reflecting on that actually. First point is that there is no need to be artificial, no need to be pretentious, but at the same time know the standard. Right? See, this humility or humble disposition should not be artificially displayed. One should naturally feel that within, and then not that, you know, heart is, you know, inflated like this and pretending to be humble. And as soon as something happens where he is not given proper respect, then he immediately flares up. Actually, it reminds me of one person once told me that please help me, please correct me if there is, he was taking a very humble role, and he was asking me, please guide me, please advise me, and so forth. And then at one point I just pointed out, you know, not too long after that, when he admitted it, or he asked me, I just pointed out a very minor thing, you know, to him, that something that he shouldn't do. And his response was, "Who are you to tell me that?" So that is, you see, that is artificial humility. You know, he said it, but he didn't mean it. Like, genuineness is what we say, we mean it. So that is the first consideration. Like, we should not, you see, if we are not Haridas Thakur, let's not pretend to be Haridas Thakur. Rather, let's try to keep Haridas Thakur's lotus feet on our heads and try to follow his example. Right? That is the first consideration. Another thing is that Vaishnava is humble, but at the same time we have to recognize that Vaishnava is not an idiot. Right? He can discriminate. Like, where it is necessary to be strong, Vaishnav becomes like a thunderbolt. Example is Hanuman. Yes, in front of Ramchandra he is like this, but in front of Ravan, I'm going to destroy you. Like another example, Angad, another Vaishnav, he, Bali's son, another monkey, associate of Lord Ramchandra. When he went to Ravan's court as Ram's messenger, Ravan did not offer him a seat. And Ravan was sitting on a big elevated seat. So what he did, with his tail, he wound it up like a spring and made a seat for himself higher than Ravan. And then he started to communicate with Ravan. His point is, I am Ramchandra's agent. I am Ramchandra's representative. My position is higher than yours. So if you don't offer it, I will make it point that you understand that my position is higher than yours. So that is called Vaishnava Ahankar. Bhima, in front of Duryodhan, he was not like more humble than a blade of grass. Right? Lochandas Thakur, he is saying that those who do not accept Chaitanya Nityananda, I kick him on his head. Right? And what kind of Vaishnav it is? People think, what kind of Vaishnav he is? Yes, that's a Vaishnav. If you do not accept Chaitanya Nityananda, I kick you on your head. Right? That is them.
Vinamrata ke bare mein prashna pucha gaya tha, ki vinamr hona kitna avashyak hai. इस बारे में बताया गया गुरु महाराज जी द्वारा कि हाँ विनम्रता आवश्यक है परंतु यह नैसर्गिक होना चाहिए न कि कृत्रिम. दूसरी बात इसमें बताई गई कि कभी कभी विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल क्रोध ही न करे. यदि भगवत भक्ति के लिए कभी क्रोध की आवश्यकता हो तो वह कर सकता है, जैसे हनुमान जी ने किया था, जैसे अंगद ने किया था. अंगद उनको जो है बहुत छोटा आसन ही नहीं था और रावण बड़े आसन पर बैठा हुआ था.
उसको आसन बैठने का जगह भी नहीं,
जगह ही नहीं था. तब चूंकि वे भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत थे तो उन्होंने यह विचार किया कि मैं भगवान का दूत हूं तो मेरा आसन इससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, और अपनी पूंछ से उन्होंने वो आसन का निर्माण किया. इस प्रकार भगवत भक्तों को क्रोध भगवान के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं.
दैट इज कॉल्ड वैष्णव अभिमान, द प्राइड ऑफ अ वैष्णव.
यदि वैष्णव भक्तों का जब अपमान किया जाए तो उसे सहन नहीं करना चाहिए.
मेक्स इट क्लियर? ओके, लेट हर आस्क इट. ओके,
बहुत ही सुंदर प्रश्न है. ये दशावतार के बारे में है. मछली से कछुआ, कछुए से फिर ऐसे करते करते पुरुष अवतार तक गुरु महाराज बताएंगे.
वेल, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द वैदिक कॉन्सेप्ट, आर यू गोइंग टू स्टडी अंडर द ब्रिटिश? सो हु आर यू गोइंग टू स्टडी अंडर? यू नीड अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. इफ यू डोंट एक्सेप्ट द प्रॉपर टीचर, हाउ कैन यू गेट द राइट अंडरस्टैंडिंग?
ये ब्रिटिशों द्वारा बताया गया है. अगर आप इसको वैदिक रूप से जानना चाहते हैं तो आपको एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और वो आपको यहीं मिलेंगे.
व्हाट इज देयर परंपरा? द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, व्हाट इज देयर डिसिप्लिक सक्सेशन? आर दे फ्रॉम ब्रह्म मद्र गौड़ीय संप्रदाय? Yeah, they are from Darwinian Sampradaya. They are from the monkey Sampradaya. Yeah, Bimal?
Guru Maharaj, in this shloka it says, Lord Brahma meditated in a Virat Roop, and then he lost his, regained his lost consciousness. So, does that mean he was actually impersonal before? Then after meditating, he saw Krishna in his heart, then he spoke Brahma Samhita.
You see, what is being addressed here is that, isn't it surprising that Brahma, a personality like Brahma, you know, forgets about the creative energy. And this is also is happening not at the right at the beginning, but it is in a, after a secondary, creation. It's something like in the morning of the day you forgot, you know, in the morning you wake up and you forget, you know, what you are supposed to do. So the point is that this is being conducted by the illusory energy of the Lord. The illusory energy is functioning in that way, that even a great personality like Brahma is subjected to forgetfulness. And not that he was impersonal, but he was, it was his forgetfulness. Now meditating upon the Virat Roop means the form of the Lord in relation to the material creation. By meditating on that form, he is recognizing the link between the Lord and the material creation. And that is how he becomes eligible to manifest the creation.
भगवान के अव्यक्त रूप पर ब्रह्मा जी द्वारा ध्यान केंद्रित करना प्रश्न था. ब्रह्मा जी भी ये जो माया शक्ति है उसके प्रभाव से माया के भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, और इस तरह जब वे विराट रूप पर ध्यान करते हैं तब उनको विराट रूप और वास्तविकता में फर्क प्राप्त होता है.
नीता चंद्र
Maharaj, actually my question is regarding your class on God Purnima.
Beg your pardon? Oh, class on God Purnima. Okay.
Actually, I have two questions. First one, actually you explained that how the unique position of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and you explained the fact that Raganuga Bhakti is following in the footsteps of Ragatmika Bhakta, and for us that is Lord Chaitanya Mahaprabhu. But can we say that, you know, as in ISKCON, can we say that for us that devotee is also Srila Prabhupada? I mean, because his life proves that, you know, his deep attachment to God.
Yeah, we can say, or rather we could say that. But one problem here is that Prabhupada's spiritual identity hasn't been revealed. Prabhupada himself, you see, we know the identity of Bhaktivinoda Thakur, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. We know the spiritual identity of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. But Prabhupada, it hasn't been. Prabhupada didn't disclose his spiritual identity. But Prabhupada said, if I tell you, you'll faint. And that's one consideration. And the other thing is also that, you see, what Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and others are doing, they're actually following the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. They're not displaying the role of the Braja Leela. Say, for example, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is Nayana Manjari. His spiritual identity is that he is Nayana Manjari. But he is not playing the role as Nayan Manjari. He is playing the role of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Right? Why? Following the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. But Mahaprabhu's role is different. Mahaprabhu is Krishna in the mood of Srimati Radharani. Therefore, Krishna is Radharani here. So when you are following Mahaprabhu, you are actually following Radharani. The devotion of Radharani towards Krishna. Right? Whereas these individuals, these acharyas in our sampradaya, they are not revealing the Manjari identity or Braja identity and not acting in that mood. They are playing a different role. of preaching, in the preaching mission. Okay? And another point I wanted to make is that when we do recognize that identity of Krishna and recognize the Raganuga, real Raganuga Bhakti, or real understanding of Raganuga Bhakti, then it becomes a general thing. Like whoever is following Sri Chaitanya Mahaprabhu, although following Vaidhi Bhakti, but it is non-different from Raganuga Bhakti. You get the point? It's non-different. Otherwise people may say, well, okay, in ISKCON you think that Vaidhi Bhakti is Raganuga Bhakti. But our understanding is different. Right? So there is no room for that. Anyone who is following Sri Chaitanya, just follow Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then Vaidhi Bhakti will automatically be transformed into Raganuga Bhakti. The followers of Chaitanya, or in simple words we can say, followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu are Raganuga Bhaktas. Isn't it?
Guru Maharaj, you mentioned how forgetfulness actually comes from forgetfulness of Krishna. But we see also in the great eternally liberated devotees of the Lord also that they forget things. Like Arjuna forgot his identity previously, and someone may forget things.
Okay, I got your point. The quick answer will be, there are two kinds of forgetfulness. One is due to the influence of Mahamaya, and the other is due to the influence of Yogamaya. You see, our forgetfulness is the influence of Mahamaya. Right? But in Krishna's service, when devotees of Krishna forget, like Arjuna forgetting, right, is actually the influence of Yogamaya. Because if Arjuna did not forget and acted the way he did, Bhagavad Gita wouldn't have been manifest. Krishna wouldn't get a chance to speak Bhagavad Gita. So it was Krishna's arrangement. In order to manifest Bhagavad Gita, he made Arjuna forget something due to the influence of Yogamaya. Same thing with Brahma. Brahma's forgetfulness or Brahma's bewilderment, Brahma Mohan Leela, is an influence of Yogamaya. Yes, Jayesh Das.
Guru Maharaj, here we see that Brahma meditated upon the Virat Rupa of Lord. Why didn't he meditate upon the Dibhuj Shamsundar Murlidhar Rupa, that is the base form of Lord?
If Brahma meditated on Dibhuj Shamsundar Rupa of the Lord, then Brahma wouldn't get involved in creation of this world. Because he would be... Then he would be... He'll just chant Hare Krishna and lose himself.
यदि ब्रह्मा जी भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करते तो वे भगवान के भक्त हो जाते और सृष्टि करना भूल जाते.
Because Brahma had to specifically manifest the creation, he meditated on the Lord's form, that is in relation to the material creation. Okay, quite a few questions. Yes, Jamuna Priya.
Guru Maharaj, my question is related to yesterday's class. I was quite baffled by the description of the Virat Roop. It was inconceivable completely. So Maharaj, my question is related to Sukadev Goswami. Firstly, that before he was liberated, he was under Brahman realization. Then his father wanted him to understand the personal form. So Maharaj, firstly, that what was his realization after his father had made that effort? Did he attain the real understanding of Krishna's personal form. And Maharaj, therefore, if that was the case that he did, then why did he ask Parikshit Maharaj to meditate on the Virat Roop at the time of death, which is so difficult?
Okay. When a teacher is, say he is a PhD and DPhil and DLit, but when he is teaching in the primary school, what does he teach? He teaches according to the need of that class, right? And then step by step he will bring the student up to the level where he can give his complete knowledge, right? So similarly, Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami's instruction to Parikshit Maharaj was coming from basic level to the higher and higher level. So initially he is saying what one has to do. How does one prepare himself for departing from his body? So that process he is actually pointing out. As I mentioned earlier also, the first step is Ashtanga Yoga. Through Ashtanga Yoga you come to see the universe, recognize the universal form of the Lord, Virat Roop. Because the Virat Roop is in relation to the material nature. So initially we are in the material nature. So when we are approaching the Lord, we have to approach Him in relation to the material nature. Then go beyond the material nature. Then go to Brahma Jyoti. Then go to Vaikuntha. Then go to Ayodhya, Dwarka. And finally you come to Krishna consciousness. Now, the fortunate thing for us is Chaitanya Mahaprabhu did not give us this gradual, you know, process of development. He just gave us the highest straight away. It's a crash course. I remember when there was a war between India and China, there was a recruitment called Emergency Commission in the army. Called Emergency Commission. Like generally get the commission in the army, you have to go through, you know, different trainings. National Defense Academy, you are trained up and then you get the commission. You get the officer's rank. Right? But during the Emergency Commission, people were recruited and given the commission straight away. Right? Also, so it is something like that. At the time of crisis, at the time of emergency, there is a special arrangement. So just as war is an emergency, so we need officers, we need the soldiers. So, you know, give them a crash course and give them the rank. So similarly, we are in an emergency situation, Kali Yuga, right? So there is an emergency, mercy. So that is what Chaitanya Mahaprabhu has done. If Chaitanya Mahaprabhu didn't come, or rather if you came before Sri Chaitanya Mahaprabhu, then that is the course that you would have to take, right?
Shukdev Goswami इतने मुक्त जीव थे, उसके बाद भी उन्होंने भगवान के विराट रूप पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया क्यों बताई? प्रश्न था, उत्तर में बताया गया है कि यद्यपि सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही निष्णात पीएचडी थे, परंतु जैसा कि एक अध्यापक जब वो पीएचडी भी क्यों न हो, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है तो उनके स्तर से वो पढ़ाना शुरू करता है. तो परीक्षित महाराज के हिसाब से उन्होंने जन कल्याण के लिए यह बताया, तथा साथ ही में चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पश्चात, यद्यपि यह एक स्लो प्रोसेस थी, अभी गुरु महाराज ने बताया कि एक क्रैश कोर्स आ गया जो तुरंत कल्याण कर देने वाला है, तो वह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही उपलब्ध हुआ, और वह भी एक तरह से जैसे कोई इमरजेंसी कमीशन होता है, जब इमरजेंसी होती है तो तुरंत कृपा करके। तो इस कलयुग की ऐसी स्थिति को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे नाम का कृपा किया, जिससे हम तुरंत भगवत भक्ति में युक्त हो सकते हैं।
यस, लास्ट क्वेश्चन।
Guru Maharaj, I understand that when the soul is fallen from the heaven, that they
heaven.
First, yes, they first become
not heaven, spiritual sky.
The spiritual sky, sorry. they first become Lord Brahma. So how many Brahmas are there if all the souls have to become first Brahma and then they drop further down? Please explain.
Then let us consider how many universes are there. Huh? How many universes are there? Inconceivable. So number of Brahma is inconceivable. How the living entities falls and how the living entities get the position of Brahma is inconceivable. So if it is inconceivable, let it be inconceivable. Right? Okay, don't try to conceive it.
Thank you.
Just let it be. Now, Prabhupada said it, we accept it.
गुरु महाराज, अपने फॉल्स ईगो और ईगो दो बातें होती हैं। तो फॉल्स ईगो यानी अहंकार, इस पर तो चर्चा हुई। ईगो जरूरी है क्या?
नहीं, ईगो का मतलब ही है फॉल्स ईगो। ईगो का मतलब ही है अहंकार। असल परिचय और भ्रांत परिचय, असल परिचय और मिथ्या परिचय, जो असल नहीं है वो है फॉल्स ईगो। और असल परिचय क्या है? कृष्णदास।
थैंक यू।
हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरे हरे।